कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन फ्रॉम यस्टरडे। वी वर डिस्कसिंग हिंदी थोड़ा अच्छा समझ में आता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे मन में जो वासनाएं हैं, तृष्णा है, वृत्तियां हैं और इच्छा, भोग इच्छा। हमने उदाहरण लिया जैसे कि पेन में स्याही होती है और उस स्याही को इस्तेमाल कर जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ शब्द या वाक्य, उसकी तुलना की गई है मन में जो वासनाएं हैं, मन में जो संस्कार है, वृत्ति है, वो जब परिणित होती है कुछ एक भोग इच्छा में, तो वो उस शब्द के समान है जो कि उस स्याही से लिखा जाता है। और हमने हमारी इच्छा की तुलना शास्त्रों पर आधारित किन किन वस्तुओं से की? आशानाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, अर्थात अंग्रेजी में जिसे शैकल्स बोलते हैं। और एक पतिव्रता स्त्री, चेस्ट वाइफ, और जल, भगवत गीता के अनुसार जो अश्वत्थ वृक्ष का प्रतिबिंब दिखता है जल में, वो दिख पाता है केवल जल के कारण, बिना जल के वो प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि, पूरी भौतिक सृष्टि हुई भौतिक इच्छा के वजह से। हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं उसके वजह से ही सृष्टि होती है। ये सारे 24 तत्वों से जो सृष्टि बनी हुई है और 84 लाख योनियां जो हैं उनका भी कारण क्या है? हमारी इच्छा। इसलिए बताया गया है कि हमारा मन है, हम इसकी चर्चा हमारे वो इंजीनियरिंग के सेमिनार में भी कर रहे थे। इंद्रियां हैं और विषय, विषय वस्तु। हमने इतनी चर्चा की थी। इंद्रिय भोग के लिए ये 3 काफी है। ये मन में जब तक वो इच्छा नहीं होती तब तक इंद्रियां किसी काम की नहीं, तब तक विषय वस्तु किसी काम की नहीं। एतद् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुह। मात्रा अर्थात विषय, तन मात्रा जिसे कहते हैं, स्पर्श अर्थात इंद्रियां, और नारद मुनि कहते हैं इच्छा, स्पर्शे छया मुह। तो यदि हम देखें इस श्रृंखला को तो इसमें विषय वस्तु निर्भर है इंद्रियों पर। इंद्रियों के अनुसार विषय वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरण, ये शर्ट, ये एक विषय वस्तु है जो किसी को पहनने को अच्छा लगता है, परंतु यदि मेरे हाथ इस प्रकार से नहीं तो शर्ट इस प्रकार से कैसे बनेगा। तो ये जो एक भोग की इच्छा है, कपड़े पहनने की इच्छा, वो हमारे इंद्रियों पर निर्भर है। ये दो हाथ ऐसे हैं, पैर ऐसे हैं, उस हिसाब से। तो ये जो शरीर मिला है, वो शरीर हमें मिला है हमारी इच्छा के वजह से। तो इसलिए इंद्रियां वो निर्भर है इच्छा पर, विषय इंद्रियों पर और इंद्रियां इच्छा पर। जैसे जिसे मांस खाने की बहुत इच्छा है तो भौतिक प्रकृति उस प्रकार का शरीर देती है, तो उस प्रकार की इंद्रियां वो खूंखार जानवर को मिलती है, शेर को इत्यादि। तो इससे समझ में क्या आता है कि इच्छा कितनी प्रबल है, इच्छा में कितनी शक्ति है कि वो हमें उसके बलबूते पर इंद्रियां दिला सकती हैं। और विषय वस्तु, ये पूरा संसार बना किससे है? विषय वस्तु से बना हुआ है। तो ये पूरे संसार की जो विषय वस्तु है, एक दृष्टिकोण से ये हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी निर्माता नहीं है, हम स्वयं इसके निर्माता हैं। जैसे जब कोई बिल्डिंग बांधता है तो कोई कह सकता है कि मजदूर ने बिल्डिंग बांधी। क्या कहोगे, मजदूर ने बांधी बिल्डिंग? ये बिल्डिंग किसने बांधी? आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लेबर, मजदूर, किसने बांधी? जो रहने वाले हैं, जो रहने वाले हैं, उन्होंने ये बिल्डिंग बांधी। परंतु कोई देखेगा? वो मैंने तो कभी देखा नहीं ईंट उठाते हुए, उनको सीमेंट बनाते हुए। इच्छा, उन्होंने इच्छा की और उनकी इच्छा पर निर्भर बाकी सब, मजदूर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, जो कोई। तो इसे क्या कहेंगे? गृह। तो गृह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है, इसलिए वो श्लोक है, अत गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तई, कि जब बद्ध जीव की इच्छा होती है भोग इच्छा, तो भोग इच्छा के वजह से उसे फिर एक गृह, और गृह का अर्थ है गृहिणी, फिर सुत आप्त, और इन सब के देखरेख करने के लिए वित्तई। वित्तई का अर्थ है पैसा कमाना। तो ये सब की शुरुआत कहां से हुई? इच्छा, एक भोग इच्छा। और वो कौन सी भोग इच्छा? वो एक भोग इच्छा कौन सी है? स्त्री संग। देखो, ब्रह्मचारी आश्रम में जो एक गृहस्थों की इच्छा है, उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्मचारी आश्रम में वो इच्छाएं पूरी होती हैं, उस एक इच्छा को छोड़कर। वो जो एक इच्छा है स्त्री संग, उस एक इच्छा को छोड़कर जो कोई बाकी इच्छाएं हैं उनकी, वो सारी इच्छाएं, वो सारी सुविधाएं ब्रह्मचारी आश्रम में भी उपलब्ध है। और स्त्री संग में भी जो फिजिकल, शारीरिक संभोग, वो संग के विषय में बताया गया। जो इमोशनल संग है वो भी ब्रह्मचारी आश्रम में मिलता है, ज्यादा मिलता है। यहां वहां की तुलना में झगड़े कम हैं, झगड़े हैं लेकिन वहां की तुलना में झगड़े कम हैं। झगड़े भी हुए तो क्या, तलाक तक नहीं आता, बात तलाक तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं कि मेरा आशीष प्रभु के साथ झगड़ा हुआ, आशीष प्रभु तलाक देता हूं। तो तलाक देके भी जाएंगे कहां? फिर से यही चटाई बिछा के सोना है हमने। लेकिन वहां पर तलाक का अर्थ है सेपरेशन, कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट में जाने के बाद फिर सुनवाई, दुहाई, क्या क्या नहीं होता। तो ये हम, हालांकि आप लोग सुने होंगे इसके विषय में, परंतु यहां पर हम डिजायर या इच्छा के संदर्भ में सब चर्चा कर रहे हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि इच्छा में शक्ति कितनी है, उसे साधारण तरह मत ले कि इतनी शक्ति उस इच्छा में कि इतनी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। ये पूरी सृष्टि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी जटिल है, इसका पूरा निर्माण हुआ हम सब की इच्छा के वजह से। भोग वांछा कोरे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, वो सब कुछ बताया गया। अब चार प्रकार की प्रतिक्रिया, फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जब हमारे मन में कोई एक भोग इच्छा जागृत होती है तो उस भोग इच्छा के प्रति चार प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। सबसे पहले उसे कहा गया है एक्टिव, एक्टिव रिएक्शन। पैसिव रिएक्शन एग्रेसिव, और चौथा assertive। जब भी मन में कुछ इच्छा होती है तो एक भौतिकतावादी मनुष्य वो तुरंत एक्टिवली उस इच्छा को पूरी करने में लग जाता है, अर्थात वो बहुत लालायित हो जाता है उस इच्छा को अब पूरी करने के लिए, उसे कहेंगे एक्टिव रिएक्शन। पैसिव रिएक्शन का अर्थ है इनडिफरेंट रहता है, इच्छा आई परंतु वो उसे क्या कहेंगे, इनडिफरेंट, उदासीन, उदासीन रहता है, न वो उसमें भाग लेता है अर्थात उसे कार्यान्वित नहीं करता वो, और न उसका एग्रेसिव रिएक्शन। एग्रेसिव का अर्थ है गुस्सा आना, इच्छा क्यों आई, इच्छा इसकी हिम्मत, इन सब के उदाहरण हम लेंगे शास्त्र से। एसर्टिव, एसर्टिव कोई जानता है एसर्टिव का अर्थ? हाँ, नहीं, एसर्टिव का अर्थ है निश्चयता पूर्वक, जैसे कोई बोलता है दावे के साथ मैं बोलता हूं, विथ assertion, I say. तो दावे के साथ कुछ करना, दावे के साथ कुछ सोचना, दावे के साथ कुछ बोलना, उसे बोलते हैं assertive, अर्थात निश्चितता, निश्चितता उसे कहेंगे assertiveness। अनुभव किए ये चार रिएक्शंस होते हैं ना हमारे अंदर, कौन सा ज्यादा होता है? ये वाला। अच्छा, तो एक्टिव रिएक्शन में उदाहरण है अजामिल, अजामिल ने जो दृश्य देखा, अंदर भोग करने की इच्छा या वासना थी, परंतु दृश्य देखने के पश्चात फिर वो स्पेसिफिक इच्छा में परिणित हुई वो वासना। तो अजामिल का रिएक्शन क्या था? एक्टिव रिएक्शन। तुरंत अजामिल सब अपने यज्ञ सामग्री छोड़कर फिर एक्टिवली उसने क्या क्या किया अजामिल ने, देखिए उसका एक्टिव रिएक्शन क्या था। अजामिल ने शादीशुदा, अजामिल ने अपनी पत्नी का बहिष्कार किया, माता पिता को बाहर निकाल दिया और इस वैश्या को लाया घर में और इससे विवाह किया। ऐसा नहीं कि रखेल के रूप में रख लिया, विवाह किया बाकायदा। तो कलयुग में भी ये सुनने में नहीं आता कि कोई वैश्या के पास जाता है कलयुग में, परंतु कोई विवाह नहीं करता उससे। यहां पर अजामिल इतना एक्टिव, उसने विवाह कर लिया। तो ये कई बार हमारा रिएक्शन रहता है कि हमने अपने विषय वस्तु को देखा इंद्रियों से, या विषय वस्तु के संपर्क में आए, जैसे कि प्रसादम हॉल में हम गए और प्रसादम हॉल में हमने देखा खीर, खीर रखी हुई है या बटर हलवा, गुलाब जामुन आज के, तो तुरंत एक इच्छा जागृत होती है। और इच्छा जागृत क्या होती? खाऊं इसे, वो इच्छा जागृत होती। तो अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम एक्टिवली उस पे भाग लेते हैं, उसे कार्यान्वित करते हैं या पैसिव, वो तो बहुत कम रहता है। एग्रेसिव तो भूल ही जाओ, एग्रेशन रहता है, एक्टिव एग्रेशन रहता है। और कई बार यदि पेट खराब है तो एसर्टिव होंगे हम, या अभी अभी बीमारी से बाहर आए डॉक्टर ने बोला है कि केवल ये खाना, गुलाब जामुन को छोड़ के बाकी सब खाओ। तो अजामिल का उदाहरण है एक्टिव रिएक्शन। पैसिव रिएक्शन, कौन सा उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी का? माता जी। अच्छा, दिस इज द डिवाइन विजन ऑफ निखिल। सम गर्ल्स वर बेडिंग, नग्न स्नान कर रही थी युवतियां, और सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के नवयुवक, केवल नवयुवक नहीं, नवजात शिशु अभी भी पैदा हुए, परंतु 16 वर्ष ही पैदा हुए, और सुखदेव गोस्वामी की सुंदरता का बखान किया है भागवत में। कि बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी थे, वो फोटो में भी आप देखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वो सुंदर, स्त्रियां सुंदर, सुखदेव गोस्वामी नग्न, स्त्रियां नग्न, सोचो मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। परंतु सुखदेव गोस्वामी का रिएक्शन क्या, इनडिफरेंट। उनके लिए पेड़ या वो युवतियां, जो कुछ जड़ चेतन एक समान, उसमें कोई उनका भेदभाव नहीं था। तो वो पैसिव रिएक्शन नहीं, वो पैसिव रिएक्शन में नहीं आएंगे। हरिदास ठाकुर ने तो उसको भक्त बनाया, वो एसर्टिव से भी आगे, उनका उससे भी ज्यादा, वो तो शुद्ध भक्त के स्तर पे है। एग्रेसिव विश्वामित्र मुनि, इसमें भी वो आएंगे विश्वामित्र मुनि। मेनका, मेनका के संदर्भ में, इसमें रंभा के संदर्भ में क्रोधित हुए। तो कई बार हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं इंद्रिय भोग के, कौन से अनुभव, दुखदायी अनुभव, या जो हमने किसी और के जीवन में दुखदायी पूर्वी अनुभव सुने या देखे होंगे या शास्त्र में पढ़े होंगे, तो कई बार हमारा जो रिएक्शन होता है वो एग्रेसिव रिएक्शन आ जाता है। परंतु वो भी सही नहीं है, एग्रेसिव रिएक्शन भी सही नहीं, क्योंकि वो भी रजोगुण का प्रभाव है। जैसे विश्वामित्र मुनि क्रोधित हुए तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव था उसके वजह से। नहीं, क्योंकि शिवजी तीन गुणों के परे हैं, तो शिवजी का उदाहरण इसमें नहीं आएगा। हालांकि कई बार शिवजी का उदाहरण लिया जाता है, जैसे भृगु मुनि ने जब परीक्षा ली तो उसमें भृगु मुनि ने देखा कि शिवजी भी क्रोधित हुए, परंतु उसमें ये जानना चाहिए कि भगवान शिवजी वो अपने आप को रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में भगवान श्री विष्णु का गुणगान करने के लिए डालते हैं। हालांकि शिवजी तमोगुण इसको संभालते हैं, परंतु वो तमोगुण में नहीं है, इसलिए वो रजोगुण में भी नहीं। तो क्रोध उनके अंदर, वो जो क्रोध हम समझते हैं जो विश्वामित्र मुनि का, वो ऐसा क्रोध उनमें नहीं थे। और एसर्टिव, इसमें किसका उदाहरण आप देखेंगे, नर नारायण ऋषि नारायण ऋषि भी बोल सकते हैं, क्या है मार्कंडेय ऋषि का, कहां पर है ये कथा, 12th कैंटो। नहीं, और कोई
दावे के साथ क्या कहना है, एसिड फैमिली व्हाट दावे के साथ रिक्यूजिंग द
विद डिटरमिनेशन, उर्वशी भीष्म पितामह, और अर्जुन, तो इससे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसे उदाहरण आए तब जाकर हम ये सब रिएक्शंस को सोचें। ये नहीं कि हम मेनका, उर्वशी, रंभा की प्रतीक्षा करें। हर एक पहलू, ब्रह्मचारी आश्रम के हर एक पहलू में हमें सोच विचार कर, जैसे एक उदाहरण लिया गुलाब जामुन का, वैसे कई उदाहरण ऐसे आ सकते हैं हमारे सामने हमारे ब्रह्मचारी जीवन में, जब हमें निर्णय लेना है कि कौन सा रिएक्शन हमें उस समय लेना चाहिए। देखिए, एग्रेसिव रिएक्शन भी और पैसिव रिएक्शन भी काम आता है। कई स्थितियों में ये दोनों रिएक्शन भी काम आते हैं, परंतु ज्यादातर बताया गया है कि ये असर्टिव रिएक्शन, अर्थात निश्चय पूर्वक, निश्चिता वो होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इस प्रकार के ये चार रिएक्शन, किसी का प्रश्न के संदर्भ में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर होता क्या है कि बिना सोचे समझे हम जो एक्टिव रिएक्शन है उसमें भाग ले लेते हैं, और उसके पश्चात जब उसका फल मिलता है, परिणाम आता है, तब फिर समझ में आता है कि मैंने गलत किया। जैसे शिव जी जब मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे, जब उनका वीर्य स्खलन हुआ तब उन्हें समझ में आया। हालांकि वो सब भगवान की लीला है, परंतु हमें सिखाने के लिए कि उसके पश्चात फिर उनको उनकी गलती का एहसास हुआ। अजामिल को भी, सौबरी मुनि को भी। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि जैसे कोई विषय वस्तु सामने आए, तो विषय वस्तु सामने आते ही कम से कम एक्टिव रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम। और जैसे कि हरिदास ठाकुर, इनका उदाहरण है कि कैसे उन्होंने उसे भगवान की सेवा में लगाया। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम उनके पदचिन्हों पर फिर चलें, तो हमको उतना बड़ा, हम हरिदास ठाकुर नहीं है। और कई ऐसे विषय वस्तु हैं जो कि इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे विषय वस्तु, तो उनको हम प्रयास कर सकते हैं भगवान की सेवा में। सबसे ज्यादा आसान है कि हम हमारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाएं, तो अपने आप जो विषय वस्तु उसके संपर्क में आएंगी वो भगवान की सेवा में लगेंगी। परंतु जो एक्टिव रिएक्शन है उसके विषय में उदाहरण है कि ये जो हमारी इच्छा है, इच्छा की तुलना सांप से की गई। और जो विषय वस्तु है उसकी तुलना दूध से की गई। और इंद्रिय भोग में लगना उसकी तुलना वो सांप को दूध पिलाने से की गई। ये इफेक्ट क्या होता है? केवल विषवर्धनम। केवल विषवर्धन। तो चार रिएक्शंस में से जो एक्टिव रिएक्शन है वो सबसे खतरनाक है, और एक्टिव रिएक्शन का परिणाम इस उदाहरण से समझा जाएगा। तो इसलिए जब भी हमारी इंद्रियां एक्टिव एंगेजमेंट में लगती हैं तो ये उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए कि किसके तुल्य है वो। जैसे कि सांप को दूध पिलाने, जब सांप दूध पीता रहता है तो वो दृश्य अच्छा दिखता है ना, दूध पी रहा है, सांप दूध पी रहा है, तो उस समय कुछ नहीं दिखता कि कैसे विष की वृद्धि हो रही है उसके अंदर, कैसे विष का वर्धन हो रहा है, वो नहीं दिखता। उसी प्रकार से जब इंद्रिय भोग में जीव लगता है तो वो इंद्रिय भोग का समय वो बहुत सुखदायक लगता है, और उस समय लगता है जैसे कि सांप दूध पी रहा है, परंतु वो दूध, हालांकि वो जो विषय वस्तु है वो भी दूध के समान पौष्टिक लगता है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु इफेक्ट क्या है कि केवल वो हमारा जो काम वासना है, जो हमारी वृत्तियां संस्कार है, वो विष के समान है, केवल उसी की वृद्धि हो रही है उसके अंदर, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब उदाहरण से ये समझना चाहिए कि इच्छा की शक्ति क्या है, और इच्छा जब हम पूरा करने जाते हैं तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए वो पिंगला का श्लोक है 11वें स्कंद में, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि इस इच्छा के वजह से ही सारे दुख की उत्पत्ति होती है, और इच्छा से मुक्त यदि कोई हो जाए तो परम सुख की शुरुआत नैराश्यम से होती है। एक श्लोक है आप बताइए जिसके विषय में कामना के विषय में कहा गया है, भुक्ति कामी, अर्थात जो भुक्ति की कामना करता है, कौन सा श्लोक है?
कामी भक्ति का मिथ्या कली अशांत कृष्ण भक्ति निष्काम होते हैं।
तो भुक्ति की कामना जब कोई करता है तो वो कामना तो पूरी नहीं होती, तो वो त्रस्त होने के बाद फिर मुक्ति की कामना करता है, और मुक्ति की कामना का हेतु है कि वो उसके लिए प्रयास करता है, तो होता क्या है कि उसमें उस प्रयास में उसे सिद्धि प्राप्त होती है, और सिद्धि प्राप्त होती है तो जैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है फिर से मुक्ति की कामना आ जाती है। तो हम भी इस्कॉन में कई बार आते हैं भुक्ति से परेशान होकर, या भुक्ति की परेशानी को सुनकर। साधारणतः हम इतने ज्यादा त्रस्त नहीं थे भौतिक संसार में, परंतु जब हम प्रवचनों में आना शुरू किए और फिर सुना इतना दुखालय अशाश्वत, ये पूरा जड़ शरीर इस सब से भरा हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक ये सब गीता कोर्स जब सुना, तो उसके बाद में फिर एक ही कामना, मुक्त। कैसे मैं मुक्त हूं? कहां कहां से? जो मैं नौकरी कर रहा हूं वहां से मुक्ति, परिवार से मुक्ति, इन सब से मुक्ति। तो उसे कहेंगे मुक्ति कामना, हमारे स्तर पर हमारी मुक्ति कामना। फिर जब हम इस्कॉन में आते हैं तो फिर सिद्धियां प्राप्त होती है। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में सिद्धि कामना कि कैसे मैं अच्छा प्रवचन देना सीखूं, कैसे गाना सीखूं, कैसे कुकिंग सीखूं, ड्रेसिंग सीखूं, उसे कहते हैं सिद्धि कामना। और फिर कुछ साल बाद जब सिद्धि कामना पूरी हो जाती है, हम थोड़ा प्रशिक्षित हो जाते हैं, ट्रेंड, स्किल्ड लेबर जिसे बोलते हैं, तब फिर लगता है अरे यही माला घुमाता रहूंगा मैं, तब फिर से मुक्ति कामी। और ये चक्र चलता रहता है, फिर से मुक्ति कामी, फिर से सिद्धि कामी, ये सब चलता रहता। इसलिए वो श्लोक में क्या कहा गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त, जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तब तक शांति नहीं प्राप्त होने वाली। तो इन सब कामनाओं को भी देखते रहना है कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में किस कामना को लेकर भक्ति कर रहे हैं। केवल मुक्ति कामना, सिद्धि कामना, वो सब सकली अशांत। तो उसके वजह से यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आप को अशांत पा रहे हैं कि बहुत अशांति हो रही है मेरे ब्रह्मचर्य जीवन में, तो देख लेना चाहिए या तो ये या ये, इनमें से कोई कामना है जो अशांत बना रही है। जब तक कृष्ण भक्त नहीं तब तक वो अशांति बनी रहेगी। इसलिए ये जो कामना है, ये सारी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषा है, स्पृहा है, वांछा है, इन सब से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना है। अन्य भक्त नहीं, अनन्य भक्त बनना है। तो अब इसके संदर्भ में हमने मन की चर्चा की कि कैसे मन वो इच्छाओं को पैदा करता है जिसके वजह से हम इंद्रिय भोग में लगते हैं। तो मन को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत कुछ बताया गया है, अलग अलग उपाय बताए गए हैं, परंतु हम एक उपाय से शुरुआत करेंगे, वो है बुद्धि। कैसे हम बुद्धि का उपयोग करें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए। Somebody can get 11th canto पार्ट वन। ग्यारहवें स्कंद में बुद्धि के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। अब दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक जिसे कहते हैं दुर्बुद्धि और एक कहते हैं सुबुद्धि। तो ये दो प्रकार की बुद्धियां हैं, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। तो जब भी व्यक्ति को इंद्रिय भोग करना होता है तो दुर्बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और भगवान की भक्ति करनी है तो सुबुद्धि। तो हर समय हमारी बुद्धि में भी ये दो भाग हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। कि जब भी भोगवांछा हुई और उस भोगवांछा को पूरा करने के लिए हम कार्यान्वित हुए, अर्थात दुर्बुद्धि के बिना कोई इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकता इस भौतिक संसार में। जैसे आपको क्या लगता है, जो लोग इतना पढ़ाई करते हैं इस कलयुग में, बिना बुद्धि के कर पाएंगे? पीएचडी करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियर, ये वो, तो बिना बुद्धि के थोड़ी ये सब हो पाएगा। तो वो कौन सी बुद्धि है फिर? मुकुंद, कौन सी बुद्धि है? दुर्बुद्धि है, सुबुद्धि है? जड़ बुद्धि।
अगर प्रभु जी वो इस प्रकार से जो कि मैं अच्छा पढ़ाई करके अच्छा जब करके वो पैसा वगैरह में भगवान का सेवा में आता है तो सुबुद्धि है, परंतु अगर वो इंद्र भक्त करने के लिए अपने ये तो दुर्बुद्धि। हाँ,
तो लास्ट में देखना पड़ेगा कि वो या तो ब्रह्मचारी बनना चाहिए या गृहस्थ। ग्रह मेदी विधि बन गया तो दुर्बुद्धि। भागवत में ये जो दुर्बुद्धि है इसकी भी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं एक प्रकार की बुद्धि है मंद बुद्धि। पिंगला, जब पिंगला का साक्षात्कार होता है तो पिंगला अपने आप को वो कहती है मूढ़ बुद्धि। जीव गोस्वामी कहे हैं एक और प्रकार की बुद्धि जिसे कहते हैं स्थूल बुद्धि। एक और 11वें स्कंद में है कहते हैं भेद बुद्धि। और इसे कहते हैं दुर्मेधा। देखो कितना वैरायटी है। भौतिक संसार में वैरायटी की कमी नहीं है। तो मंद बुद्धि का अर्थ है कि जैसे कि जानवरों की बुद्धि जो होती है वो बुद्धि विकसित नहीं, तो उस बुद्धि को मंद बुद्धि या मूड बुद्धि, ये दोनों जानवरों की बुद्धि इस कैटेगरी में आती है। और स्थूल बुद्धि, जब इसको ये भी बोलते हैं नैरो इंटेलिजेंस, ये दोनों को विश्वनाथ चक्र ठाकुर नैरो इंटेलिजेंस बोलते हैं। नैरो इंटेलिजेंस अर्थात केवल वो जो तात्कालिक सुख है, बुद्धि केवल उसी के विषय में सोचती, इमीडिएट एंजॉयमेंट जो है केवल उसी के विषय में सोचना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति केवल तात्कालिक सुख के विषय में सोचता है तो समझना चाहिए वो मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि। जैसे पिंगला ने यही कहा अपने विषय में कि मैं इन पुरुषों में अपना सुख देख रही थी, अर्थात मैं मूढ़ बुद्धि की स्त्री थी, केवल तात्कालिक सुख देख रही थी। परंतु जो उसको साक्षात्कार हुआ वो साक्षात्कार उसे उदार बुद्धि का हुआ, कि कैसे ब्रॉड इंटेलिजेंस इसे बोलेंगे, कि कैसे भगवान ही केवल मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान ही केवल किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, केवल वही हैं जो किसी जीव को संतुष्ट कर सकते हैं। तो स्थूल बुद्धि ये शब्द से समझ में आता है ग्रोस इंटेलिजेंस, अर्थात स्थूल चीजों में बुद्धि लगाना, केवल स्थूल शरीर, स्थूल वस्तुएं, ये स्थूल जगत, जैसे जो साइंटिस्ट हैं इन सब की बुद्धि कौन सी है? स्थूल बुद्धि। ये केवल अपनी बुद्धि इसी में लगाते हैं कि ये जो प्रकृति है भगवान की, इस प्रकृति में जितने सारे तत्व हैं कैसे हम उनको इस्तेमाल कर कर एक नया आविष्कार कर कर निकालें, तो उसे कहते हैं स्थूल बुद्धि। वो भी देहात्म बुद्धि मतलब स्थूल बुद्धि, उसी में स्थूल बुद्धि देहात्म बुद्धि वो सब उसी में आता है। भेद बुद्धि में भी वो आ सकता है। भेद बुद्धि का अर्थ है भेद करते रहना। भेद किस में करते रहना? कि क्या मेरे स्वार्थ के लिए अच्छा है और क्या मेरे स्वार्थ के लिए बुरा है, इसे कहते हैं भेद बुद्धि। उसमें यदि केवल भगवान श्री कृष्ण को कोई केंद्र बनाए तो वो भेद बुद्धि वो सही बुद्धि बन सकती है, परिणित हो सकती है किसमें? सुमेधा में या सुबुद्धि में। परंतु यहां पर नेगेटिवली उसे कहा गया है कि वो भेद बुद्धि जिसमें व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय सुख में भेदभाव करते हुए उसका चयन करता है। जैसे रूप गोस्वामी का श्लोक है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। इंद्रिय भोगी भी श्लोक का पालन करते हैं। इंद्रिय भोग के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, इंद्रिय भोग के लिए जो प्रतिकूल है वर्जनम। तो संकल्प लेते हैं जो कुछ अनुकूल है इंद्रिय भोग के लिए वो ढूंढना, उसको हासिल करना और उसका भोग करना, और जो भी प्रतिकूल है हमारे इंद्रिय भोग के लिए उसे दूर भगाना, उसे कहते हैं भेद बुद्धि। दुर्मेधा, दुर्मेधा कहते हैं वृकासुर। वृकासुर जैसे लोग क्रुकेड इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, कि उस बुद्धि से किसी दूसरे को हानि पहुंचाना, उसे कहते हैं दुर्मेधा। जैसे ये आतंकवादी तो वो सब दुर्मेधा इसमें, इस श्रेणी में वो सब आता है। ये सब हम इतना विस्तार से इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि फिर हमारी भी बुद्धि कई बार कौन सी कैटेगरी में, सबसे पहले यदि दुर्बुद्धि में तो दुर्बुद्धि में भी देखो कितनी वैरायटीज है कि हम कौन कौन से वैरायटी को चखते रहते हैं इस मनुष्य जीवन में या पशु के जीवन में। और सुबुद्धि के भी अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे भगवत गीता में है व्यवसायात्मिका बुद्धि, वहां पर भी भगवान बुद्धि के विषय में कह रहे हैं। ग्यारहवें स्कंद में एक उदाहरण है, ये हम पढ़ेंगे बाद में. उसे कहते हैं विवेक विरक्ति. ये फिर से पिंगला का जो प्रसंग है उसमें विवेक विरक्ति इस प्रकार की जो सुबुद्धि है उसकी चर्चा की गई है. और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो आशीर्वाद दिया करते थे, कृष्ण मति रस्तु, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है ये इस प्रकार का आशीर्वाद मिलना कि हमारी मति हर समय कृष्ण में बनी रहे. इसे कहते हैं कृष्ण मति. तो व्यवसायत्मिका बुद्धि किसे कहेंगे? हाँ, उसे विवेक विरक्ति भी बोल सकते हैं कि उन्होंने जो विरक्त का जीवन जिया अपनी विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए. तो विवेक बुद्धि से, देखिए विवेक बुद्धि से कोई भुक्ति भी बन सकता है, भुक्ति में भी लग सकता है, परंतु विवेक जो विरक्ति को लाए, जो हम वो 3 V's डिस्कस कर रहे थे, उसे कहेंगे विवेक बुद्धि लीडिंग टू विरक्ति. तो जड़ भरत उन्होंने व्यवसायत्मिका बुद्धि भी दिखाई कि चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में मैं किसी से आकर्षित नहीं हूं, पिछले जन्म में एक हिरण से आकर्षित हो गए. तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है डिटर्मिनेशन, जैसे ध्रुव महाराज. और बहुशाखा, उसमें जो भगवान कहते हैं कि बहुशाखा की वजह से फिर वो बुद्धि मेनी ब्रांच्ड हो जाती है, अर्थात ये फिर इसमें से कोई कोई उस बुद्धि में अंदर आते रहते हैं. अब 11वें स्कंद में एक उदाहरण है जब महाराज निमि नव योगेंद्र से मिले. तो यहां पर जो श्लोक आता है, देहेंद्रिय प्राण मनो ध्यान, धिया धिया का अर्थ है बुद्धि. जन्माप्ययक्षुद भय तर्ष कृच्छय संसार धर्मय अभिमुह्य माना स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान. ट्रांसलेशन: विद इन द मटीरियल वर्ल्ड वंस मटीरियल बॉडी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डीके. इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर हर समय जन्म और बुढ़ापे की तरफ जाता है. सिमिलरली द लाइफ एयर प्राण इज हैरेस्ड बाय हंगर एंड थर्स्ट. हमारे अंदर जो प्राण है वो भूख और प्यास के वजह से हर समय त्रस्त रहता है. द माइंड इज ऑलवेज एंग्शियस, द इंटेलिजेंस हैंकर्स फॉर दैट विच कैनॉट बी ऑब्टेन. वेरी सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई आई टुक दिस वर्ड. बुद्धि हर समय उन चीजों के पीछे लालायित रहती है जो नहीं मिल पाती. एंड ऑल द सेंसेस आर अल्टीमेटली एग्जॉस्टेड बाय कॉन्स्टेंट स्ट्रगल इन द मटीरियल नेचर. और उसके वजह से वो बुद्धि मन को, इंद्रियों को लगाती है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात सुख. वस्तुएं प्राप्त हो सकती परंतु सुख प्राप्त नहीं हो सकता. परपोर्ट: अकॉर्डिंग टू श्रील मध्वाचार्य देयर आर 3 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग्स विद इन दिस वर्ल्ड. ध्यान से सुनो, मध्वाचार्य बोलते हैं 3 प्रकार के बुद्धिमान जीव हैं, द डेमीगॉड्स, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स एंड डीमंस. तो डीमंस को भी मध्वाचार्य ने कहा है कि वो बुद्धिमान है. अर्थात हमारे अंदर, एक साधक के अंदर, ये 3ों प्रकार के बुद्धिमान जीव पाए जा सकते हैं. क्योंकि देखो हम कोई पुण्य किए हैं तब जाकर भक्ति में आए हैं, हमने कोई अज्ञात सुकृति जिसके वजह से हम भक्ति में आए हैं। अर्थात जो पुण्य करता है वो देवता का शरीर प्राप्त करता है, और कहा गया है जो भक्ति में लगा है सारे देवताओं के गुण, कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक, समा सते सुरा, कि सभी सुरों का गुण, सूर्यों का गुण अंदर है उस भक्त के। तो यहां पर मध्वाचार्य जो बोलते हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग इज द डेमी गॉड, तो वो भी है ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमें भौतिक शरीर मिला है इसलिए भौतिक शरीर होने के कारण हम साधारण मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, अर्थात साधारण बुद्धि जो एक साधारण मनुष्य में होती है वो भी है हमारे अंदर। और तीसरी श्रेणी डीमन, दुष्कृति या दुर्बुद्धि। तो यहां पर मध्वाचार्य के अनुसार ये तीन प्रकार के बुद्धिमान जीव हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि हमें हर समय सुबुद्धि या सुमेधा, जैसे यहां पे दुर्मेधा है इसका विपरीत सुमेधा, सुमेधा का अर्थ है ऑस्पिशियस इंटेलिजेंस, तो ऑस्पिशियस इंटेलिजेंस या शुभ बुद्धि यदि हमें बनानी है अपनी, तो हर समय कृष्णमति होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तात्पर्य में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वो एक गेम का उल्लेख कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं योयो। कौन जानता है योयो? ये योयो कहते हैं, बचपन में हम लोग भी खेले हैं सब, ये वो इलास्टिक से बॉल को बांधा जाता ना और वो ऐसे ऐसे खेले, सब लोग खेले ना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में यो यो। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस गेम का उदाहरण दे, क्या समझ में आपको यो यो से, यो यो याम याम तनुम तनुम भक्ता। क्या समझ में है? मैं पढ़ता हूं। चलो, भक्ति सिद्धांत गिव्स द एग्जांपल दैट जस्ट एज अ चाइल्ड्स बॉल मे बी फास्टन टू द एंड ऑफ अ रोप सो दैट इट कैनॉट बाउंस अवे, अ डिवोटी हु सरेंडर्स टू कृष्णा बिकम्स टाइड टू द रोप ऑफ वेदिक इंजंक्शंस एंड इज नेवर लॉस्ट इन वर्ल्डली अफेयर। समझ में आए? नहीं। अच्छा। जैसे वो गेंद जो है वो उस रस्सी से या उस इलास्टिक से वो गेंद बांधी जाती है, तो उसको कितना भी जोर से आप फेंको वो कितनी भी दूर जाए वापस वो आने वाली, क्योंकि वो उस रस्सी से बांधी गई है वो गेंद। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि एक भक्त वो इस भौतिक संसार में चाहे कहीं पर भी जाए, यदि वो भगवान को शरणागत है अर्थात उस रस्सी से बंधा हुआ, उस रस्सी की तुलना की गई है वेदिक इंजंक्शन जिसको हम बुद्धि से समझ पाएंगे, तो वो हर समय बार बार वो आता रहेगा। तो हाउ कैन वी ट्रांसलेट इन अवर ब्रह्मचर्य लाइफ, कि यदि हम शास्त्र से अपनी बुद्धि को बांध के रखें, या से अ डिजायर विल यू नो विल कॉल यू समवेयर, तो बॉल जाएगा ना उधर. तो हो सकता है कि आपके मन में कोई इच्छा हुई, अरे बहुत हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, थोड़ा खुली हवा, इंजीनियरिंग. तो जो भी इच्छा पूरी करने के लिए यदि वो जीव यहां वहां जाएगा, जैसे वो गेंद जाती है, परंतु यदि उसने वैदिक इंजंक्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि लगा के रखता है, वो बांध के रखता है अपनी गेंद को, तो फिर से वो खींच के आ जाएगा. इसलिए इस्कॉन के इतिहास में ये देखा गया है कि जो भी भक्त केवल विषय वस्तु से आकर्षित होकर गए ना छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम, वो अंततः इवेंचुअली वापस आए. कई बार होता क्या है कि रस्सी बहुत लंबी होती है कहीं, तो बॉल थोड़ा लंबा जाके बाउंस होके फिर आता. बट हुएवर हैज लेफ्ट द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ फिलोसॉफिकल डाउट्स, अर्थात रस्सी काटी है उसे, दे हैव नेवर कम बैक. सो इट इज सेड दैट इफ समबडी, अगर किसी को समस्या हो रही है फिलॉसफी को लेकर, तो कहा गया है कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला पढ़ो. और यदि चैतन्य चरितामृत की आदि लीला पढ़कर समझ गया कोई, तो कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और नहीं समझा तो भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि वो यदि फिलोसॉफिकल समस्या लेकर, दर्शन शास्त्र हमारे इसको लेकर छोड़ना चाहता है, तो आदि लीला समझे पहले. तो यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में भी किसी का कोई फिलोसॉफिकल डाउट है, तो आदि लीला चैतन्य चरितामृत पहला अध्याय वो पढ़ना शुरू करें. समझ गया तो कोई समस्या नहीं फिर उसकी रहेगी, नहीं समझा तो फिर बोल सकते हैं माला लो और जप करो. तो यहां पर भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इस श्लोक में ये उदाहरण दे रहे हैं, किसका, योयो. हालांकि यहां पे लिखा नहीं है, परंतु उस गेम को योयो बोलते हैं. अब एक और उदाहरण 11वें स्कंद में जो बुद्धि के संदर्भ में है, वो है भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो गीता सुनाए, उद्धव गीता. उसमें प्रमुख भाग क्या है उद्धव गीता का, कोई जानता है? अवधूत ब्राह्मण. तो अवधूत ब्राह्मण क्या कथा हुई अवधूत ब्राह्मण की? चौबीस गुरु लिए उन्होंने. तो अवधूत ब्राह्मण जब महाराज यदु मिले इनसे, तो महाराज यदु ने क्या देखा अवधूत ब्राह्मण में? उनका शरीर बहुत मोटा था और बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा इंद्रिय भोगी है ये, परंतु महाराज यदु ने अवधूत ब्राह्मण को देखा तो महाराज यदु पूछते हैं कि आपने अपनी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कैसे बनाई? बुद्धि के संदर्भ में उनसे पूछते हैं कि वो उनकी बुद्धि को पहचान गए कि ये व्यक्ति इस प्रकार से बिना कुछ किए यदि ये इतना हष्ट पुष्ट है तो अवश्य ही ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, ये मूर्ख नहीं हो सकता. अंग्रेजी में उसे कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट प्रोप. सबसे लोएस्ट है एक्टिव फूल. सबसे लोएस्ट है एक्टिव फूल. उससे थोड़ा अच्छा है पैसिव फूल कि मूर्ख है परंतु कम से कम वो एक्टिव नहीं पैसिव. उससे थोड़ा ऊंचा है एक्टिव इंटेलिजेंट. बुद्धिमान है परंतु फिर भी उसे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है. परंतु सबसे बुद्धिमान प्रभुपाद के अनुसार लेजी इंटेलिजेंट. उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना बुद्धिमान है कि करवा लेता है. तो कृष्ण ही इज द पर्सन हु गेट्स थिंग्स डन. वो अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं और उनको उनको आवश्यकता नहीं है कोई राक्षस आए, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, संहार पालन ये सब कुछ उनके अवतार कल अंश अवतार ये सब करते हैं. पैसिव फूल का मतलब एक्टिव इंटेलिजेंट. तो अब अवधूत ब्राह्मण वो बोलते हैं महाराज यदु को, श्री ब्राह्मण उवाच संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाश्रित यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो तामीह तां श्रणु. द ब्राह्मण सेड माय डियर किंग विथ माय इंटेलिजेंस आई हैव टेकन शेल्टर ऑफ मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स. Having gained transcendental understanding from them, I now wander about the earth in a liberated condition. Please listen as I describe them to you. यहाँ पर अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि की शरण ली. कौन सी बुद्धि? सुबुद्धि. सुबुद्धि की शरण ली और मैंने अपने जीवन में कई गुरुओं को अपनाया और बुद्धि के द्वारा इन गुरुओं की शरण लेने के पश्चात मैंने अपनी बद्ध अवस्था से अपने आप को मुक्त किया है. आई रोम इन दिस ऑन दिस अर्थ इन अ लिबरेटेड कंडीशन. इसका पर्पोट अच्छा है. The word buddhi upashrita in this verse indicates that Brahmana's spiritual masters did not directly speak to him. Instead, he learned from them by his intelligence. So, हमारे ब्रह्मचारी जीवन में भी हमें इस अपेक्षा में नहीं रहना चाहिए कि हर बार कोई ब्रह्मचारी क्लास में हमें इस प्रकार से बताता रहेगा. ये नहीं कि जब कोई ऐसी स्थिति आ गई हमारे प्रचार में तब हम भाग रहे हैं. कहां रिकॉर्डिंग कहा है उसका वो लेक्चर का. यहां पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बुद्धि की शरण ग्रहण की अर्थात सुबुद्धि की और उसके द्वारा अपने आप उन्होंने ये सारे जो अलग अलग तत्व हैं इस भौतिक संसार के 24 जो गुरु उन्होंने लिए परंतु अलग अलग तत्वों से भी उन्होंने अपनी बुद्धि को लेते हुए सीख ली. All living entities who are inimical to Lord Krishna glorify useless material things and spend their lives trying to lord it over material objects they falsely worship. Thus the conditioned souls try to increase their duration of life as well as their fame and beauty by means of mundane religiosity, economic development and gross sense gratification. King Yadu noticed that the saintly Avadhuta did not behave like that. Therefore the king was inquisitive to find out the actual situation of the Brahmana. In reply to the king, the saintly Brahmana states, I do not consider 24 elements of physical world as objects of my sense gratification and therefore I don't consider accepting or rejecting them. It's very important. कि हमारी बुद्धि इंद्रिय भोग में लगती है क्योंकि विषय वस्तु है 24 elements ये जो बोल रहे हैं. लेकिन क्योंकि इन्होंने सुबुद्धि की शरण ग्रहण की तो ये बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया रिजेक्ट भी नहीं किया. अर्थात ही डिंट रिएक्ट इन एक्टिव वे और एग्रेसिव वे. Thus, rather, I accept the material elements as my instructing spiritual masters. Thus, even though wandering throughout the material world, I am never bereft of service to Guru. यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु सेवा का अर्थ क्या है, केवल पर्सनल सर्वेंट नहीं बनना. गुरु सेवा मीन्स एवरी मोमेंट यूजिंग योर सुबुद्धि, दैट इज गुरु सेवा अकॉर्डिंग टू अवधूत ब्राह्मण. समझ में आया गुरु सेवा का अर्थ? गुरु सेवा का अर्थ है सुबुद्धि की शरण ग्रहण करना हर क्षण. गुरु सेवा का अर्थ ये नहीं कि शारीरिक रूप से, वो भी गुरु सेवा है, परंतु यहां पर अवधूत ब्राह्मण सिखा रहे हैं कि गुरु सेवा का अर्थ हर एक क्षण जो सुबुद्धि है उसकी शरण ग्रहण करना. टेकिंग शेल्टर ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस आई ट्रेवल अबाउट द अर्थ कॉन्स्टेंटली एंगेज ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म बाई इंटेलिजेंस आई ट्रांसेंड यूजलेस डिजायर इज वॉट वी आर डिस्कसिंग. अगेन आई रीड दिस. By intelligence, I transcend useless desires. And my ultimate goal is the loving devotional service of the Lord. तो यहां पर अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैंने उन इच्छाओं को खत्म नहीं किया. I transcended, मैं ऊपर उभरा उन इच्छाओं के. जैसे कि यमुनाचार्य बोलते हैं कि जब भी अब मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के विषय में सोचता हूं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो क्या भवती, नहीं दूसरी लाइन क्या, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार नव नव रस धाम्नि दितम रंतु मासी भवती मुख विखार सुष्ठु निष्ठिवनम च. कि अब जब भी विशेष रूप से सेक्स प्लेजर स्त्री संभोग की इच्छा होती है तो वो थूकते हैं उसके उस इच्छा पर. और वो जो नारी संगम स्मर्यमाण उसका जो स्मरण आता है उसके ऊपर वो थूकते हैं. परंतु कब? क्योंकि वो नव नव रस ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर, अर्थात कृष्ण मती. तो कृष्ण मती जब तक नहीं आएगी तब तक वो थूक नहीं आएगा. लिटरली अगर यमुनाचार्य के श्लोक को ले, श्रील प्रभुपाद एक बार वो श्रील प्रभुपाद पानी पी रहे थे और एक भक्त वो रीडिंग कर रहे थे भागवत से, तो उन्होंने यमुनाचार्य का वो श्लोक पढ़ा कि यमुनाचार्य इज सेइंग आई माय लिप्स कर्ल इन डिस्टेस्ट एंड आई स्पिट एट दैट थॉट. तो उस समय प्रभुपाद भी थूके एंड आई ऑल्सो वो ग्लास में थूके. तो हालांकि वो स्थिति आना वो भगवान की देन है, परंतु उसे हमें कृत्रिम रूप से नहीं अपनाना. जैसे इस्कॉन में पहले जब यमुनाचार्य के ये श्लोक नए नए सुने ब्रह्मचारी, तो वो लोग करते क्या थे, जब भी कोई स्त्रियां गुजरती थी ये इस्कॉन की माता जी, तो वो थूकते रहते थे रास्ते पे. तो दैट इज नॉट हाउ वी गेट द हायर टेस्ट, इज बाय स्पिटिंग. सिंपली व्हाट विल हैपन, अवर माउथ विल गो ड्राई एंड द रोड विल बिकम डर्टी एंड बिकॉज ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द माताजी. जैसे महाराज बोल रहे थे, ऑल दोज ब्रह्मचारी हु टोल्ड दैट लेडीज आर स्टूल, दे लेटर ऑन बिकेम द हॉग्स टू ईट दैट स्टूल. तो इसलिए यहां पर अवधूत ब्राह्मण से बुद्धि के संदर्भ में हम ये शिक्षा ले रहे हैं, बुद्धि उपाश्रिता, कि गुरु सेवा और इस भौतिक संसार में हम हमारी बुद्धि को लगाते हुए क्या क्या सीख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे हमारे अगले सेटिंग में बुद्धि का संबंध श्रद्धा से कैसे है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड फेथ विच वी रिक्वायर वेरी मच, बिकॉज मेनी टाइम्स इंटेलिजेंस एंड फेथ दे डोंट गो वेल टुगेदर। सो हाउ इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पेसिफिकली एज अ ब्रह्मचारी साधका वी हैव टू हैव अवर इंटेलिजेंस एंड फेथ गोइंग वेल टुगेदर, नॉट इल टुगेदर। सो दैट वी विल डिस्कस, दैट इज जीव गोस्वामी एक्सप्लेनेशन ऑफ to achieve success in our sadhana bhakti we should have intelligence and faith going well together। Hare Krishna। Kisi ka koi prashna aaj jo humne charcha ki uske sandarbh mein।